Rama 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 Hare 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 Krishna. तो आप सबका स्वागत है श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में. नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का यहाँ सेवन होता है. जैसे प्रसाद का नित्य सेवन यहाँ होता है, ऐसे भागवत का भी सेवन होता है. नित्य सेवन सेवा है. तीसरा स्कंद भागवत का इस वक्त चर्चा चल रही है. तीसरे स्कंद के ऊपर तीसरे स्कंद की पहले चार अध्यायों की सुंदरता यह है कि दो भक्तों का मिलन है, उद्धव और विदुर का. इससे ये सीखना है कि भागवत का आनंद भक्तों के संग में ही लेने में रस आता है. जब ऐसे अद्भुत भक्त आपस में मिलते हैं तो भागवत का रस बहने लगता है. और कैसे दो भक्तों का वर्णन है, एक उद्धव और दूसरा विदुर. दो ही भगवान के कृपा पात्र थे. श्री कृष्ण ने त्रेक्टासुर का वध किया. त्रेक्टासुर आया है, उस वक्त नहीं था, अभी नया है. कल जो का असुर है त्रेक्टासुर. सो भागवत भक्तों के संग में सुनने में आनंद आता है. यह तीसरे स्कंद का बड़ा सुंदर वर्णन है. और फिर तीसरे स्कंद में बात कर रहे हैं मैत्रेय जी, जो भगवान श्री कृष्ण से भागवत सुन के आए हैं और सुन रहा है विदुर, जो कृष्ण की कथा सुनने में बहुत ज्यादा अति रुचि रखता है. तो दूसरा इससे ये संदेश मिलता है कि भागवत भगवान श्री कृष्ण से परंपरा के अंतर सुननी चाहिए. और दूसरा, सुनने वाले में बहुत ज्यादा उत्साह और उत्सुकता होना चाहिए. फिर तीसरे स्कंद के दो विभाग हैं. सृष्टि कैसे हुई इसका वर्णन करते हुए दो विभाग ऐसे हैं. पहला विभाग विशेष रूप से भगवान के वाराहदेव अवतार का है. भगवान ने वाराह रूप धारण क्यों किया, क्योंकि सृष्टि करनी थी तो पृथ्वी के ऊपर करनी थी, और पृथ्वी थी ही नहीं. जब पृथ्वी ही नहीं थी, वो तो गर्भ सागर में थी, तो सृष्टि कहां करे. तो पृथ्वी को गर्भ सागर से निकालने के लिए वाराहदेव का प्रकट्य ब्रह्मा जी के नासिका से हुआ. तो वाराहदेव ने किया क्या, बोला हिरण्यकश को मारा. तो हिरण्यकश कहां से आया, ये कथा का ऐसे ऐसे कथा चल रही है. तो कहां से हिरण्यकश आया, तो दिति और कश्यप के विवाह के बाद उनके उदर के अंदर दो असुरों का प्रवेश कैसे हुआ, उसके कारण क्या प्रभाव पड़ा, आज वहां पढ़ रहे हैं अंग्रेजी भागवत में कि एक द्रु महाराज ने हृदय के अंदर भगवान को बाध्य मानो बांध लिया तो पूरा संसार कांपने लगा. आज का श्लोक वहां ये है, द्रु महाराज ने भगवान को हृदय में बांध लिया. यशोमदा मैया ने कृष्ण को बाहर संसार में बांध के दिखाया, लेकिन योगी लोग हृदय में भगवान को बांध देते हैं तो संसार कांप के। प्रभुपाद जी कहते इसका अर्थ ये है कि जिस भक्त के हृदय में भगवान आ जाता है वो ऐसे कार्य करता है कि पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर कांपने लगती है, अरे क्या हो गया, कैसे हो गया। और यहां दूसरा असुर उधर में आया है तो पूरी दुनिया कांप रही है, ये भी दुनिया कांप रही है लेकिन ये भयभीत होकर कांप रही है, वहां भी भयभीत हुए थे देवता और यहां भी भयभीत हुए देवता। तो ब्रह्मा जी के पास जाके देवता कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, सृष्टि में सब उल्टे काम चल रहे हैं, कारण क्या है। तो कारण ब्रह्मा जी बताते हुए कथा जो कर रहे हैं वो हम सुन रहे हैं अभी यहां। तो ये कथा कौन कर रहा है, ब्रह्मा जी कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर संदेह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रह्मा जी से पहले कोई था नहीं, कि ब्रह्मा जी ने गलत कहा है कोई कहने वाला है नहीं क्योंकि उससे पहले कोई था ही नहीं, इंसान तो कोई था नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा तो ये आखिरी बात है नहीं, ब्रह्मा जी पहला पैदा हुआ उसने कह दिया तो वो जो कह दिया वो सत्य है, तो ये ब्रह्मा के वचन है इसलिए इसके ऊपर कुछ मन कपोल से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बात तो ब्रह्मा जी की सृष्टि के समय की है, सत्ययुग शुरू हुआ है ऐसे सत्ययुग के समय की बात है। ब्रह्मा जी कहते मेरे चार पुत्र मैंने उत्पन्न किए थे मन से, मेरे मानसिक पुत्र थे, तो पहले संतान मन से उत्पन्न किया हुआ करता था, सोचा और हो गया। आजकल भी भगवान सोचता है और सृष्टि हो तो हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान ने कहा सृष्टि हो तो सृष्टि हो गई। और पहले ये शक्ति ब्रह्मा जी के पास थी लेकिन ये चार पुत्र सृष्टि करने में सहयोग न कर पाए, भ्रमण कर रहे थे जहां भी जाते थे कोई रोकता नहीं था, 14 भुवन घूम लिया, ये ज्ञानी है, चारों पुत्र ज्ञानी है, सनकादि कुमार ज्ञानी माने जाते हैं, उन ज्ञान की उत्पत्ति सतोगुण में होती है, इसका मतलब ये सतोगुण में थे और सतोगुण में जब ज्ञान होता है तो एक चीज साथ में और आती है, वो क्या होती है, थोड़ा सा अभिमान आता है। 14 भुवन हमने घूम लिया, बाबा ब्रह्मा जी अब कहां जाएं, क्या करें, आपकी सृष्टि तो सारी देख ली। ब्रह्मा जी ने कहा ये हमारे बच्चों का उद्धार होगा जब ये भगवान के चरण में जाएंगे, भगवान की शरण में जाएंगे। ब्रह्मा जी से ये सीखना चाहिए आपके बच्चे अमेरिका घूम के आए तो फिर उसको कहना कि कृष्ण मंडला मंदिर में जाओ और हरे कृष्णा जपो, भले 14 लोग ये घूम के आए 7 पृथ्वी के फिर भी भगवान की भक्ति में भेजना, ये ब्रह्मा जी सिखा रहे हैं, पूरी दुनिया घूम के आ गए, अरे इधर बैठ के भजन करो बहुत हो गया, ये सब फॉरेन घूम के आए, चारों कुमार सब फॉरेन घूम के आए थे, कहीं और जाने की अभी आवश्यकता नहीं थी इनको, पहले देखने की इच्छा होती है ना, दुनिया जो सामने है वो तो देख ही चुके थे, जहां जा सकते हैं सब बहुत जगह देख चुके थे। अब ब्रह्मा जी वर्णन कर रहा है वैकुंठ का क्योंकि वो वहां गए थे, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवा उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्व दर्शन, उसने तत्व का दर्शन किया था, वो स्वयं उसको देख चुके थे, जिसने देखा था उसकी बात है। कल अंग्रेजी क्लास में जो थे उनको याद है वो 2 श्लोक अद्वैत प्रभु ने आचार्य ने भागवत से कहे थे कि भगवान के स्वरूप का जो निंदा करता है वो चाहे ब्रह्मानंद को प्राप्त क्यों न कर चुका हो फिर भी नीचे गिरने की संभावना रहती है, और ये दोनों श्लोक ब्रह्मा जी ने कहे थे, दोनों श्लोक भागवत में ये ब्रह्मा जी ने कहे, एक दशम स्कंद में कहा है और एक दशम स्कंद के 14वें अध्याय में है और दूसरे अध्याय में। तो ब्रह्मा ही क्यों कहता था, क्योंकि ब्रह्मानंद जी ने भगवान के रूप को देखा था तो उसके अंगों का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे थे कि उनके अंग कितने सुंदर हैं, तो ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं और सुन कौन रहे हैं, देवता रहे हैं। भी कोई बात कहे तो पहले कहना चाहिए, पूछना चाहिए कौन कह रहा था भैया, कौन सुनने वाला था। सुनने वाले देवता थे इंद्र आदि देवता, और सुना रहे थे ब्रह्मा। ब्रह्मा जी कहते हैं वो चार मेरे पुत्रों को मैंने वैकुंठ जाने के लिए प्रेरणा दी और वो वैकुंठ के लिए रवाना हो गए, और वैकुंठ का सुंदर दर्शन हम सुनते आ रहे हैं आजकल। और प्रभुपाद जी ने अच्छा एक भाग श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत सुंदर भावार्थ लिखा है कि वैकुंठ का इतना वर्णन सुनते हैं, काय के लिए लिखा है वैकुंठ का ये वर्णन। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि यहां जब हम सुनते हैं कि पाश्चात्य देश में अमेरिका में बहुत सुख है, सुविधा है, हाँ धन बहुत है, और रोड बहुत अच्छे हैं, लाइट कभी जाती नहीं है, तो हमारी इच्छा होती है अमेरिका जाएं, है ना। जब किसी अच्छी जगह का सुनते हैं कि वहाँ शांति है, वहाँ धन है, वहाँ वैभव है, वहाँ सुख है, तो वहाँ जाने की इच्छा होती है। इसलिए इतना सुंदर वैकुंठ का वर्णन है, फिर वहाँ जाने की इच्छा होनी चाहिए ना हमारी। इसीलिए इस वैकुंठ का वर्णन किया गया कि हमारे अंदर ये लालसा पैदा हो कि उस स्थान को हम प्राप्त करने का मन में संकल्प करें। तो वर्णन किया ही इसलिए जा रहा है। वहां प्रभुपाद ने लिखा कि लोगों को अमेरिका जाने की तो इच्छा होती है, उसका जब महानता सुनते हैं, महिमा सुनते हैं, और यहां भगवान के धाम की महिमा होती है, वहां क्यों जाने की इच्छा नहीं लोगों की हो रही। वहां जाने की इच्छा पैदा करनी चाहिए। तो छह दरवाजे, इसका मतलब पहले जमाने में इस धरती के ऊपर भी पहले जमाने में जो शहर हुआ करते थे उसको दरवाजा हुआ करते थे बाहर, हाँ कोर्ट हुआ करते थे। ये पहला कोर्ट, अभी भी दिल्ली में कहते हैं ये कौन सा दरवाजा है, ये अजमेरी गेट है, यहाँ से अजमेर से लोग इस रास्ते से आते थे। तो परकोटे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अभी दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर जो है अपना श्रीरंगम, और उसके भी चार पाँच छः कितने चार परकोटे हैं कि पाँच है कि सात है, सात परकोटे हैं, सात। तो वो क्योंकि वैकुंठ है, वो अंदर भगवान विष्णु है, तो वो भी वैकुंठ है। तो छः दरवाजे तो पार कर गए, छह दरवाजे तो पार कर गए कौन, चार कुमार, किसी ने रोका नहीं और कोई रोकता भी नहीं था। वैकुंठ में, वैकुंठ तक कोई पहुंच भी नहीं सकता है, पहुंचेगा तो आदमी योग्य होगा वही पहुंचेगा, तो किसी ने रोका नहीं। सातवां दरवाजा, उसके ऊपर पहुंचे हैं आज, छह दरवाजा पार कर गए। इसलिए सात कोट इसलिए है किसके, श्रीरंगम के, क्योंकि अंदर भगवान विष्णु विराजते हैं, तो वैकुंठ ही हो गया। तो वैकुंठ के सात कोट वहाँ हैं, तो ये उससे ऐसे लगता है कि सात कोट, तो छह दरवाजे तो पार कर गए। सातवें दरवाजे के ऊपर दो बहुत अद्भुत सुंदर व्यक्तियों का दर्शन हुआ। उन व्यक्तियों का वर्णन भी है कि वो कैसे थे और उन्होंने क्या आभूषण पहने हुए थे, जो पहले दिखने में आया उसका वर्णन आज कर रहे हैं। इसका मतलब छह दरवाजे पार कर चुके हैं कौन, चार कुमार, और सातवें दरवाजे पे खड़े हैं। और इस दरवाजे के बाद मानो के भगवान का अपना पैलेस है। अब भगवान जहाँ वैकुंठनाथ वास करते हैं वो स्थान इसके अंदर है, क्योंकि इसके बाद ऐसा वर्णन नहीं आता है कि दो तीन दरवाजे खोल के फिर भगवान विष्णु बाहर आए, ऐसा वर्णन आता नहीं। गरुड़ पीछे आया, भगवान विष्णु भागते हुए आए, पैदल ही आ गए, लक्ष्मी जी पीछे आ रही थी, अचानक में ऐसे आ गए कि कहीं रुके भी नहीं, अचानक ऐसे उठ के गेट के ऊपर आ गए। ऐसे समझना चाहिए भाई, राजा का महल तो किले के अंदर है, लेकिन शहर का दरवाजा तो अजमेरी गेट दूर है, अजमेरी गेट से कोई आया तो राजा को परवाह नहीं पहुंच गया, लेकिन गेट पे कोई आया और वहां कोई बात हो तो अंदर से भगवान बाहर गेट के ऊपर आ गए, ऐसा वर्णन आगे आएगा। तो आज के श्लोक में अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे बेटू ने सातवें दरवाजे के ऊपर क्या देखा, उस दर्शन उसका कीजिए। अब वैकुंठ जाने के बाद देखें या यहां बैठ के देखें, आइए वैकुंठ के सातवें दरवाजे को देखते हैं कि वहां कौन खड़ा है, कैसे है। अभी भी अपने मंदिरों के अंदर बाहर दरवाजे के ऊपर दो बनाते हैं जय और विजय को, जो भगवान के वैकुंठ के दरवाजे के दरबान है। वैकुंठ के भगवान के महल के दरवाजे के दरबार हैं, ये विषय बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि अध्याय का नाम क्या है, वैकुंठ का वर्णन। तो जो अभी तक किया है वो भी तो वैकुंठ का ही वर्णन है। तो आज के श्लोक में आइए पढ़ते हैं, मता द्विरेफा वन मालिकया निवेतो विन्यस्तया असीता चतुष्टया बाहो मध्ये वक्त्रं ब्रुवा कुटिलया स्फोटा निर्गमा भयां रक्ता ईक्षणेना च मनाक मनाक रभसम दधानौ मता द्विरेफवन मालिकया निवित्तौ विन्यस्तयासीत चतुष्ट बाहु मध्ये वक्त्रं ब्रुवा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन च मनागरभसं दधानौ मता द्विरेफ मन मालिका निवितौ विन्यस्तसासीत चतुष्ट बाहु मध्ये वक्त्रं ब्रुवा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन च मनागरभसं दधानौ मता द्विरेफ मन मालिका निवित्तौ विनस्तयासीत चतुष्ट बाहु मध्ये वक्तुं ब्रुवा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्यां रक्तक्षणेन च मनागरभसं दधानौ वक्त्रं भुर्वा कुटिलया स्फुट निर्भया रक्ते क्षणेन च मनाग्रभयं दधानौ माताजी। मता द्विरेफवन मालिका
होता है उन्मत्त आनंद में, मद मस्ती जो है ना, मस्ती में अपने, कौन था मस्ती में, दुई रेफ, दुई का मतलब दो, रेफ का मतलब दो मूछ भंवरे की जो होती है, जो भंवरे होते हैं ना दो मूछ वाले, द्विरेफ भावरे बड़े मदमस्त थे। कहां थे मदमस्त? वनमालिकया, वनमाला के ऊपर। भावरे भावरे बहुत मस्त थे। कहां मस्त थे? बोलो वनमाला के ऊपर मस्त थे। वनमाला, वनमाला का क्या अर्थ हुआ? वनमाला क्यों लिखा है? क्योंकि सिर्फ माला लिखते तो दुकान से कागज के फूलों वाली भी हो सकती है। वनमाला का लिखा है ताजे फूलों की माला से। ताजे फूलों की माला से मतलब वन में से फूलों को तोड़ के उसकी माला उसी वक्त बनाई गई थी। कहां थी वो माला? भंवरे तो माला के ऊपर थी, माला कहां थी? बोला माला थी निवीतो, गर्दन, गर्दन पर। निवी का मतलब नेक अंग है, निवीतो गले में लटकी हुई थी माला। माला गले में लटकी हुई थी। गर्दन पर लटकते निवीतो विन्यस्तया, विन्यस्तया क्या है? गले के ऊपर लटकी हुई थी। तो गले के ऊपर लटकी हुई थी तो सिर्फ कंठी माला थी क्या? नहीं नहीं, चारों ओर फैली हुई थी। कैसे दिख रही थी? बोला चारों ओर रखे हुए, चारों ओर बड़ी लंबी माला थी। आप देखा है भगवान की माला चरणों तक नीचे जाती है, तो ये माला बहुत लंबी थी। असीत, असीत का अर्थ कभी आपने एक नाम कभी बहुत हमेशा असीत कृष्ण बोलते हैं किसी को, असीत कृष्ण। असीत का अर्थ यहाँ लिखा है नीला बिल्लू। असीत का मतलब नीले रंग का। तो माला कहाँ थी? चारों ओर से नीलिमा का शरीर था उसके ऊपर, चारों ओर से लंबी लटकी हुई थी, गर्दन से लेके नीचे लटकी हुई थी। भाई ऐसे कि बहुत दूर दूर तक तो नहीं थी, बोला नहीं चारों भुजाओं के बीच में थी। तो इसके बाद आएगा असीत का अर्थ क्या हुआ? नीला। तो ये आपको याद करने का है, असीत कृष्ण, नीला कृष्ण, ब्लू कृष्ण। तो असीत एक शब्द है, उसका अर्थ जैसे संस्कृत का एक शब्द आपके वोकैबुलरी में बढ़ेगा, असीत नीला। विनस्तया असीत चतुष्ट बाहु मध्ये, चारों बाजुओं के बीच में। विशेष रूप से इस्कान के ठाकुर जी को बनाने के लिए आप जाएंगे ना जयपुर में, तो वो कहेंगे आप इस्कान के लिए आए हैं। तो बोला उन्हें विशेषता क्या है? बोला विशेषता ये है कि माला बाजुओं के बीच में पहनाने के लिए हमको बाजुओं में जगह छोड़नी पड़ेगी। दूसरों की माला बाजुओं के बाहर से होती है। देखा है आपने ठाकुरों को मंदिरों के अंदर? देखा है आपने? वो सर के ऊपर दूसरे जो आपको मूर्ति है उसके ऊपर मुकुट बना हुआ मिलेगा, तो उसके ऊपर मुकुट पहनाने कैसे? इस्कान के ठाकुर का सर तो ऐसे बिल्कुल साफ मिलेगा, उसके ऊपर बाल और मुकुट लगाना है। तो ये जो प्रभुपाद जी ने और परंपरा ने ठाकुर जी को माला पहनाने का विधान बनाया है, ये भी शास्त्र से लिया है कि माला चार भुजाओं के अंदर होनी चाहिए, भुजाओं के बाहर माला। ये माला तो नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? ये माला तो नहीं हुई, इसको क्या बोलेंगे? इसको कोई माला कहेगा क्या? भुजाओं से बाहर तो बंधन हो गया, भुजाओं के अंदर माला होनी चाहिए। कितना स्पष्ट है कि माला है कहाँ है? भुजाओं के, चारों भुजाओं के अंदर है। कितना डिटेल दिया है सुखदेव गोस्वामी ने कि माला भुजाओं के अंदर है, चारों भुजाओं के अंदर माला है। तो इसलिए आप देखा यहाँ इस बाजू के अंदर ऐसे करके माला को डालते हैं, जो ड्रेसिंग करते हैं उनको माला के अंदर, भुजाओं के अंदर डालने का प्रयास करते हैं। ये मतलब ये शास्त्र के माला पहनने का भी कोई विशेषता होती है? ऐसे हरेक को माला पहनाना ठीक नहीं है, इसलिए जिसको पहनने का किसको पहना दिया था? दुर्वासा ने दे दी थी इंद्र को, और इंद्र ने पहला दिया हाथी को, और बड़ा अपराध हो गया। इसको लेकर तो बहुत सोचना चाहिए कि माला भगवान की प्रसादी माला मिलती है, उसके लिए कितना सम्मान हमको होना चाहिए। और ये माला कहाँ पहनी हुई थी? तो माला पहनी हुई थी, कैसी माला थी? वन के फूलों की बनी हुई थी। कहाँ थी? गर्दन में लटकी हुई थी, और गर्दन में लटकी हुई थी पूरा गर्दन, और गर्दन के आगे छाती, ये सब नीलिमा, नीलिमा का बना हुआ नीला, ये सारा नीला था चारों ओर से, और दो चारों भुजाओं के बीच में। चारों भुजाओं के बीच में मध्य ये माला थी। तो अभी तो माला भी देखी, भुजाएं भी देखी, अब और क्या? ब्रह्मा जी कहते हैं, बोला मेरे बच्चों ने माला तो देखी, बड़े खुश हुए, लेकिन ऊपर देखा, थोड़ा सा गर्दन से ऊपर देखा, तो गर्दन से ऊपर क्या दिखाई दिया उनको? वक्त्रम मुखमंडल। पहले माला दिखी, फिर माला गले में थी तो गले से ऊपर थोड़ा देखा, तो मुखमंडल देखा। तो वक्त्रम का मतलब चेहरा, मुखमंडल। तो मुखमंडल में क्या दिखा? भ्रुवो, भ्रुव दिखा। बोला कैसा था? मुस्कुरा रहा था। बोला नहीं, कुटिल, बड़े टेढ़े थे, कैसे भ्रुव थे? बोला कुटिल, बहुत टेढ़े थे, टेढ़े। और साथ में क्या था? स्फुट निर्गमाभ्याम, स्फुट निर्गमा। अब भ्रुवों को कुटिल देखा तो थोड़ा और नीचे आके देखा, नासिकाओं को, ऐसे नासिका से बहुत गर्म गर्म सांस छोड़ रहे थे, इसका अर्थ है क्रोध में थे, कि भ्रुव भी टेढ़े हो गए थे नासिका से। स्फुट, स्फुट का अर्थ लिखा है हुंकारते हुए, निर्गमाभ्याम का मतलब है श्वास, वो बड़ा कैसे आ गया है अंदर, जैसे कोई ऐसे आदमी आ जाए अचानक, आप महाप्रसाद की प्लेट खोलो और थोड़ा हो खाने वाला, और अंदर कोई घुसता हो तो आप उसको देखो कहाँ से आ गया, क्या करना चाहिए इसका है? तो भ्रु टेढ़े हो गए और नासिका से फुफकारने लगा, कभी कभी सांप की तरह फुफकारना, क्रोध मतलब क्रोध आया, इसका अर्थ है क्रोध। अब तो नासिका भी देख ली, अब तो कुछ और भी है, भ्रु देखे नासिका थी तो बीच में आंख कैसे रह गई? नहीं, बोला अभी आंख की बात करते हैं। बोला रक्त ईक्षणे, आंख लाल हो गई, रक्त लाल, ईक्षणे आंख, आंख लाल हो गई। च तथा मनाक रभसम दधानो, आंखें, कोई मूर्ति तो थी नहीं कि एक जगह खड़ी हो, तो आंखें लाल तो थी, लेकिन कैसे थी लाल? बोलो मनाक रभसम दधानो, कुछ कुछ चंचल क्षुब्ध और दृष्टि ऐसे फेर रहे थे, ऊपर से नीचे ऐसे देख रहे थे, कौन आए, कपड़ा भी नहीं पहना हुआ है, कहाँ आए, चार कुमारों को ऐसे देख रहे थे आंखों से, तो आंखें हिल रही थी, और कैसी हिल रही थी? क्रोध में हिल रही थी, और अच्छी तरह से उनका, जैसे फोटो निकालते हैं क्या दिखना है ऊपर से नीचे तक, अच्छी तरह से उनको देख रहे थे। तो ये श्लोक का अर्थ है। अब ठीक है, ये शब्दों का अर्थ क्या देखा चार कुमारों ने? पहले तो देखे भौंरे, उनका आवाज आ रहा था, कहाँ थे? वनमाला के ऊपर थी। वनमाला कहाँ थी? गले में थी। किसके गले में थी? वो जो दो व्यक्ति देखे उनके गले में थी, और गले से माला थी, और पूरे नीले अंग के ऊपर फैली हुई थी, चारों भुजाओं के बीच में थी, और उनका मुख मंडल जो है वो थोड़ा से भ्रुवें टेढ़े हो गए थे, आंख लाल हो गई थी, और नाक नासिका से गरम गरम सांस छोड़ते हुए और क्षुभ दृष्टि से देख रहे थे। तो ये दर्शन कर रहे हैं चार कुमार जय और विजय का। ठीक है, अब इसका पढ़ते हैं अनुवाद। दोनों द्वारपाल ताजे फूलों की माला पहने थे, जो मद उन्मत भौरों को आकृष्ट कर रही थी, और उनके गलों के चारों ओर तथा उनकी चार नीली बाहों के बीच में पड़ी हुई थी। ये माला कहाँ पड़ी हुई थी उसका वर्णन है। अपनी कुटिल भौवों असंतुष्ट नथनों तथा लाल लाल आंखों से वे कुछ कुछ क्षुब्ध प्रतीत हो रहे थे, थोड़े बहुत नाराज हो चुके थे। और तात्पर्य मिश्र प्रभुपाद लिखते हैं, उनकी मालाएं भौरों के झुंडों को आकृष्ट कर रही थी। प्रभुपाद जी उनकी मालाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी मालाओं के ऊपर भौंरे क्यों आ गए थे? बोला क्योंकि वे मालाएं ताजे फूलों की बनी हुई थी, ताजे फूलों की मालाएं बनी हुई थी, इसलिए मालाओं के ऊपर भौंरे। इसका मतलब पुरानी मालाओं के ऊपर भौंरे नहीं होते, मक्खियां होती है ना, पुरानी मालाएं के ऊपर मक्खी बैठती है, भौंरे नहीं आते, ताजी माला के ऊपर भौंरे आते हैं। तो माला ताजी भगवान को अर्पण करनी चाहिए। फूल अपने, इसलिए फूल का बगीचा अपना बनाया जाता है। भगवान के अपने पुराने जितने मंदिर है उनके अपने बगीचे होते हैं, तो कहते हैं ये गोविंद देवी जी का बगीचा है, रंगनाथ का बगीचा है, अपने कृष्ण बलराम का, यहाँ पीछे 2 एकड़ बगीचा है, पीछे अपना फूलों का बगीचा है, और जाके वहाँ से सेवादारी माला वो फूल वहाँ से लेके अपने हाथ से आएगा और माला बनाएगा। ये सिद्धांत है कि ताजे फूल की माला होनी चाहिए। से लिखने का यहाँ अभिप्राय ये है कि प्रायः बड़े शहरों के अंदर बड़े बड़े जो फूलों की सजाएं होती हैं ना, कहीं शादी मंडपों को, वो फूल कहीं आपने फेंके हुए देखे हैं क्या? कहीं फेंके हुए देखे हैं? फिर नहीं दिखे, वो रात को उतार के उसको वापस अच्छी तरह से ला के दोबारा बेचते हैं लोग। ऐसे बड़े शहरों के अंदर इसका वर्णन मिलता है। रात को 1 घंटे के लिए तो फूलों की सजा हुई, वहाँ से उतार के ताज़े फूल क्या उसको पानी में, पानी क्यों फूलों के ऊपर छिड़क के बाहर रखते हैं? क्योंकि पुराने हो गए हैं, उठाओगे तो पत्ते ऐसे गिरने शुरू हो जाते हैं, तो इसके अरे भंवरे कहाँ, इसके अंदर भंवरा कहाँ बैठेगा? इसके ऊपर भंवरा नहीं बैठेगा, उसमें रस तो होना चाहिए। भंवरा रस, भंवरे को रस चाहिए, रस ताज़े फूल में होता है, सूखे हुए फूल में रस नहीं होगा, तो रस वाला फूल चाहिए। इसलिए ठाकुर जी के लिए पहले बगीचा हुआ करते थे, बड़े बड़े बगीचे, हाँ 2 एकड़ 4 एकड़ के बड़े बगीचे हर मंदिर को अपने अपने हुआ करते थे, और सेवाधारियों का काम था। अभी भी बरसाना में कहते राधा बाग, और वहीं से फूल ऊपर जाते हैं। तो ताज़े फूल भगवान के लिए अथवा वैष्णव के लिए माला देनी है तो ताज़े फूलों की, ये इसमें से पुरानी माला से क्या मिलता है, जिनको ज़्यादा माला पहनाई जाते हैं उनसे। मुझे एक दो गुरुजनों ने कहा कि आप समझते हैं कि हमको माला पहनाते हैं सम्मान मिलता है, वो तो मिलता है, लेकिन चुनटियाँ काटती हैं तभी हमें पता लगता है। माला पुरानी होती है, अंदर लाल लाल चुनटी होती है, और अच्छी तरह गले के अंदर काटती है तब पता लगता है। भंवरे नहीं हो तो चुनटियाँ आके बैठती हैं, माला पुरानी हो गई तो चुनटियाँ उसके अंदर बैठ जाएगी। तो ताज़ी ताज़ा माला, क्यों ताज़ा माला था? तब प्रभुपाद जी लिखते हैं, वैकुंठ लोक में हर वस्तु ताजी है, हर वस्तु ताजी नवीन तथा दिव्य होती है। इसका अर्थ यह है कि वैकुंठ में कोई जड़ चीज है ही नहीं। विश्व वैकुंठ में रजोगुण है ही नहीं तो वहां कोई नई चीज बनती ही नहीं है। रजोगुण होगा तब तो सृष्टि होगी ना, सृष्टि होगी तो आप कहेंगे लोग बढ़ गए हैं, फिर कंपटीशन होगी, फिर झगड़ा होगा। अब कुछ बढ़ना ही नहीं है तो झगड़ा होना ही नहीं है, रजोगुण तो है नहीं वहां, तीनों गुण तो नहीं है ना वैकुंठ में, ये तो सब मानते हैं ना। तो जब गुण नहीं, जब तमोगुण नहीं है, नाश करने वाला ही नहीं है, तो हर चीज वहां, पहले तो वहां कोई प्राकृतिक चीज है ही नहीं, सब अप्राकृतिक है, दिव्य है। वैकुंठ में जो कुछ भी है वो पुराना होता ही नहीं है, नया हर वक्त नया होता है, हर एक चीज दिव्य है, चिन्मय है। फूलों को भी मालूम है कि हम भगवान के गले में जाना है, तो उनकी इच्छा होती है कि हम भगवान के गले में जाएं, हमको भगवान के गले में माला बना के पहनानी है। फूलों को भगवान की सेवा की इच्छा होती है। हर एक, ऐसे भागवत में जब दामोदर लीला का वर्णन आता है तब ऐसे आता है कि दूध जो चूल्हे के ऊपर उफन रहा था, वो दूध भी चिन्मय था। उसने कहा कृष्ण अगर माता जी का दूध सुबह सुबह पी के यशोदा का पेट भर लेगा तो हमको पिएगा नहीं, फिर हमारे जीवन का अर्थ क्या है? हम अपने आप को आग में नीचे डाल के आत्महत्या कर लें और क्या करें, भगवान की सेवा तो मिली नहीं तो जिए काय के लिए। तो दूध का ये भाव था, और यशोदा मैया उस दूध को उतारने क्यों गई? भक्त दूसरे भक्त को भगवान की सेवा में लगाने में सुख लेता। यशोदा उस एक भक्त दूध को जो उबल रहा था, तपस्या कर रहा था भगवान की सेवा में जाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए गई ताकि वो भगवान की सेवा में जा सके। इसलिए यशोदा के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता कि कृष्ण को भूखा क्यों छोड़ा, क्योंकि वो एक भक्त को भगवान की सेवा में लगाने गई थी। थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था इस वैकुंठ के वर्णन की वजह से, जैसे हमारे रमाकांत प्रभु ने कहा ब्रज भागवत में है, तो मैं वैकुंठ डाल के ब्रज भागवत में देख रहा था, तो एक चीज मेरे को देखने में आया कि पांडवों से ज्यादा भगवान ने भीष्म पितामह और विदुर के ऊपर कृपा की, बड़ा आश्चर्य लगता है, विदुर के ऊपर पांडवों के विदुर के घर में चले गए खाने के लिए और भीष्म पितामह के सामने अंत समय खड़े हो गए। बोला क्यों दोनों के ऊपर ज्यादा कृपा की? क्योंकि दोनों ने पांडवों की सहायता की थी। इन दोनों के ऊपर इसलिए भगवान ने ज्यादा कृपा की क्योंकि इन्होंने भगवान के भक्त पांडवों की बहुत बड़ी सहायता की थी, क्योंकि इन्होंने पांडवों की सेवा की थी इसलिए भगवान को ये बहुत प्रिय थे। तो जो भगवान के भक्तों को भगवान की सेवा में लगाने में सहायता करता है वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो हर एक चीज वैकुंठ में चिन्मय है, नवीन है। नवीन का मतलब कुछ पुराना हुआ होता नहीं, कोई चीज वहां पुरानी होती नहीं, देयर इज नो ओल्ड एज, कोई पुरानी चीज है ही नहीं। तो इसका मतलब वहां न्यूज़पेपर होगा ही नहीं, कोई नई न्यूज है ही नहीं तो न्यूज़पेपर काहे के लिए होगा, ये तो डिपार्टमेंट ही नहीं होता है। न्यूज़पेपर है क्या वहां? नहीं है ना, वहां न्यूज़पेपर ही नहीं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा सबकी परेशानी के रात सारे कौन जागते हैं पागलों की तरह? न्यूज़पेपर वाले। क्या समाचार देने वाले? आज यहां लूट गया, यहां आग लग गई, यहां बम विस्फोट हो गया, कोई अच्छी खबर होती है क्या? और सब लोग सुबह सुबह उठ के न्यूज़पेपर ही क्यों पढ़ते हैं? कि नई चीज सबको चाहिए, लेकिन न्यूज़पेपर ही क्यों पढ़ते हैं सब लोग? क्या है, सुबह सुबह जब आदमी होता है ना सत्वगुण में होता है, तब मन में आता है कि अच्छा आदमी बनना चाहिए, बेईमानी चोरी नहीं करनी चाहिए, मैं इंसान अच्छा बन जाऊं तो अच्छा है। इसलिए पेपर जब आता है तो देखते हैं इसने चोरी की, इसने डाका डाला, तो बोला फिर मैं काहे के लिए अच्छा आदमी बनूं, इतने सारे बेईमान है तो मैं एक ही उसके साथ अच्छा हूं तो मैं काहे के लिए सुधरने का प्रयास करूं। तो न्यूज़पेपर सुधरने वाले आदमी को बेईमान बनाने की बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। मैं सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि प्रातः काल का समय जो सुबह सवेरे आदमी उठता है तब वो सत्वगुण में होता है थोड़ा, और उसके मन में होता है कल इतनी बेईमानी हो गई, अच्छा नहीं है, जाना चाहिए मंदिर में भगवान का सेवा करके आना चाहिए, पाप कम करने चाहिए, ऐसे मन में सुबह भाव थोड़ी देर के लिए आता है। जैसे ही पेपर आता है इसने भी किया, उसने भी किया, उसने भी किया, तो मैं कोई अकेला थोड़ी हूं, कोई बात नहीं, चलो जहां है वहीं ठीक है। तो न्यूज पेपर ये बहुत बड़ी समस्या उसकी है, इसलिए वैकुंठ में न्यूज है ही नहीं, क्योंकि हर एक चीज पहले से नहीं है और कोई नई चीज बनने वाली है ही नहीं, तो रजोगुण ही नहीं है। और सभी विशेषता वहां क्या है कि किसी को किसी से द्वेष नहीं है, किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं है, किसी को किसी से कॉम्पिटिशन नहीं, सभी भगवान की सेवा के लिए है। तो ऐसे वातावरण को वैकुंठ का वातावरण कहते हैं कि जहां स्पर्धा ना हो, जहां ईर्ष्या ना हो, यहां द्वेष ना हो, एक दूसरे की सहायता की जाए, किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए, तो उसको वैकुंठ का वातावरण कहते हैं। प्रभुपाद जी अपने भक्तों को जब देखते, बहुत सुंदर दिखते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे, बोला ये सब वैकुंठ से आए, ऐसे उनके कहने का कभी कहे ये सब देव डिसेंडेड फ्रॉम वैकुंठ, देखो लगता है कि भक्त वैकुंठ से आए, कोई द्वेष नहीं किसी से, प्रेम है, चारों ओर से जाके सेवा करने का भाव है। तो भक्तों के अंदर ये भाव होना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। किसने हमसे पूछा था ईर्ष्या और द्वेष में क्या अंतर है? ईर्ष्या और द्वेष में क्या अंतर है? किसने पता नहीं पूछा था, किसी के अंदर कितनी भी अच्छाई है केवल उसके अंदर अवगुण देखना, इसको बोलते हैं ईर्ष्या। अच्छे आदमी के अंदर कोई ना कोई ढूंढ के खराबी निकालना, काले धब्बे को देख लेना, ईर्ष्या का अर्थ होता है काली साइड को देखना, ब्लैक साइड जो आदमी की होती है उसको देखना। बहुत सारा चमचमा रहा है लेकिन एक तिल है, बोला इतना काला तिल इतना कैसा है इसके मुंह के ऊपर है, अरे उसकी वजह से सुंदरता है, बोला क्या काला तो है ना। इसलिए वो सिंह का जो है, हनुमान जब जा रहे हैं लंका में तो सिंह का छाया ग्रहणी, वो हनुमान की छाया को पकड़ के नीचे खींचती है, इसको बोलते हैं ईर्ष्या का द्वेष। भक्त की हृदय में जब होता है तो दूसरे के अवगुण को लेके नीचे उसको खींचता है, गिराना चाहता है, छाया ग्रहणी का मतलब काली चीज को पकड़ना, छाया काली होती है ना, तो दूसरे के अंदर काला धब्बा काली चीज अवगुण को देख के उसको नीचे खींचना, उसको ईर्ष्या कहते हैं। द्वेष का अर्थ क्या है? किसी की अच्छाई को देख न सकना, किसी की अच्छाई को देख न सकना, फिर उससे घृणा करना, उसके निंदा करना, ये द्वेष को, किसी की अच्छाई को देखने में बहुत पीड़ा होती है, अंदर हृदय जलता है। और ईर्ष्या में दूसरे के अंदर बुराई देखने के लिए बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ता है और उसको नीचे गिराने का प्रयास किया जाता है। है एक जैसे शब्द लेकिन इतना सा थोड़ा अंदर अंतर दोनों में दिखता है। शिशुपाल द्वेषी था, उसको द्वेषी कहा गया, कुछ ईर्ष्यालु और द्वेषी में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है, लेकिन वैकुंठ में ना ईर्ष्या है ना द्वेष है। तो ये वातावरण भक्तों के बीच में होना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद ने इसके लिए बहुत सुंदर शब्द कहा लव एंड ट्रस्ट। भक्तों के बीच में प्रेम और विश्वास का वातावरण होना चाहिए और ये दोनों चीजें हमारे अंदर तब आएंगी जब हमारे को भगवान से प्रेम और भगवान के शब्दों के ऊपर विश्वास होगा, तब हम भक्तों से प्रेम और विश्वास कर सके। तो असल में हमारा मंदिर में आने का उद्देश्य है कैसे भी हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें, और वो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा कैसे? कृष्ण की कथा सुनने से। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति का साधन है कृष्ण कथा। कृष्ण कथा सुनेंगे तो कृष्ण में आसक्ति होने लगेगी। भवनों को ताजी माला में आसक्ति है, कृष्ण की कथा कृष्ण में आसक्ति पैदा करेगी, क्योंकि कथा कृष्ण की नित्य नवीन होती है। कृष्ण की कथा नित्य नवीन होती है, कभी पुरानी नहीं होती है। जो कहते हैं ये मैंने पहले सुनी है वो पुराने हो गए हैं, लेकिन कथा पुरानी नहीं हुई है। हर समय कृष्ण की कथा नवीन नहीं होती, नहीं लगेगी। कब? जब हमारा हृदय पवित्र होने लगेगा। जितना हृदय पवित्र हुआ उतना कथा नई लगने लगेगी। अगर हृदय में पवित्रता नहीं आई ना तो हृदय कथा पुरानी लगेगी, क्योंकि अभी तक अंदर सफाई नहीं हुई है तो कथा पुरानी लग रही है। ये तो पहले सुनी है, इसका मतलब आप पहली जगह पे खड़े हो, आगे बढ़े ही नहीं हो। इसका असर नहीं है कि कथा में चेंज नहीं आई है, आप आगे नहीं बढ़े, उधर के उधर खड़े हो। हृदय पवित्र होगा तो कथा में रुचि आने लगेगी। हाँ, भागवत कथा में रति होनी चाहिए। कभी कभी रति शब्द आता है, कथा में रति होना चाहिए। रति शब्द बहुत गंभीर विषय शब्द है। रति शब्द का अर्थ असल में ये है कि स्त्री पुरुष घंटों बैठ के बातें करते हैं, आपस में टाइम जाता है पता नहीं लगता, उसको रति बोलते हैं। ऐसे भगवान की कथा सुनते सुनते ये भी पता नहीं लगे कि 9 बज गया, प्रसाद का टाइम हो गया, दोपहर हो गई, आज लंच होने, ये भी पता ना लगे। कथा में इतना आनंद आ जाए कि आदमी सब कुछ भूल जाए, तो उसको बोलते कथा में कथा नई लग रही है। वैकुंठ में हर चीज नई है, कोई चीज पुरानी है नहीं। आप लोग भी क्या कहते हैं, नई गाड़ी आई तो खुश हो गए, नया घर आया तो खुश हो गए, नए कपड़े आए तो खुश हो गए। इस दुनिया में हर नई चीज को देख के आदमी खुश होता है ना, तो वैकुंठ में हर चीज नई है इसलिए सब आदमी खुश है। सभी आदमी वहां खुश क्यों? क्योंकि हर चीज नई है इस दुनिया में। नई बच्चे थे तो कितने खुश होते, दिवाली आएगी नए कपड़े मिलेंगे, दिवाली आएगी खुश, उससे पहले खुश होना लग जाते थे। जो जब हमारे को कोई नई चीज मिलती है तब खुश होते हैं, और वैकुंठ में हर चीज नई है। प्रभुपाद कहते एवरीथिंग इज न्यू, सब चीजें नई की नई पड़ी है, पुरानी होती ही नहीं है। पुरानी पुराना हमको कौन करता है? काल। समय जो है वो पुराना करता है, समय का कोई प्रभाव वैकुंठ में नहीं होता, काल का प्रभाव वैकुंठ में नहीं है, इसलिए कोई बूढ़ा भी नहीं होता है, सभी जवान है। भागवत में तो लिखा है कि जब कंस को भगवान श्री कृष्ण ने उधार कर दिया, महाराज उग्रसेन को राज दे दिया, वसुदेव देवकी को आजाद कर दिया, तब सब जो यदुवंशी अलग अलग जगहों में चले गए थे प्रांत में, सब वापस आए, और वापस आए क्या सुंदर श्री कृष्ण के मुख को देखते देखते बूढ़े जवान हो गए। लिखा है बूढ़े जवान हो गए, उसके अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा और शक्ति आ गई, बूढ़े जवान हो गए, ऐसे भागवत में लिखा है। जहां वापस सब यदुवंशी आए थे बूढ़े तो हो गए थे, बूढ़े इसलिए भी हो गए थे कि बहुत कृष्ण से दूर चले गए थे, कहीं और जहां जाके रहना पड़ा था। आदमी जब अपने प्रेमी से दूर होता है तो अपने आप बूढ़ा होने लगता है, प्रेमी के पास आने से एकदम जवान हो जाता है वापस। तो कृष्ण का प्रेम करने वाले सारे यदुवंशी वापस ओजस्वी तेजस्वी
और युवक जैसी उन सबके अंदर स्फूर्ति आ गई। तो भगवान के आते ही सब चीजें नई अपने आप होने लगी, सब जवान हो गए, ऐसा वर्णन है मथुरा के अंदर यदुवंशियों का वापस आगमन के ऊपर कंस के उद्धार के बाद। तो हर चीज नई भगवान, तो इसका अर्थ है हम रोज मंगल आरती में दर्शन भगवान का करने जाते हैं तो हम हमेशा जवान ही रहेंगे, किसमें कॉन्शियसनेस में, कभी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा ऑलवेज रिमेन। कल अंग्रेजी में एक जो कल चर्चा चल रही थी उसमें बात ये थी कि तपस्या तो ध्रुव महाराज ने बहुत की, कठिन तपस्या की, शरीर के ऊपर उसका प्रभाव हो सकता है, तपस्या का होता है, तपस्या शरीर को तपाती है लेकिन आत्मा को आनंद देती। इसलिए जो लैंग्वेज लिखी है बहुत सुंदर अंग्रेजी में लिखी है रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए, कल हमने कहा था बॉडी वॉज फास्टिंग सोल वॉज फीस्टिंग, शरीर तप कर रहा था लेकिन आत्मा आनंद का उत्सव मना रही थी। तो आत्मा के आनंद का उत्सव नवीनता में है, तो कृष्ण कथा आत्मा का उत्सव है, आत्मा का उत्सव है ये, शरीर का तप है लेकिन आत्मा का उत्सव है। तो जो शरीर का तप करता है वही आत्मा के उत्सव का रस आस्वादन कर सकता है, ये भी रेसिप्रोकल है, जितनी तपस्या का भाव होगा उतना भगवत कथा में भगवत नाम में आसक्ति और रुचि होगी। तो तपो देव्यम पुत्र का, जब ऋषभ देव भगवान का अवतार अपने 100 बेटों को कहता है बेटा तपस्या करो, 100 बेटों वाली बात सुनते हैं, फिर भक्ति विनोद ठाकुर को 12 बेटे थे, उसके अंदर बड़ा किसी ने लिखा अच्छा है 12 थे एक सन्यासी हो गया तो चिंता नहीं है, अब एक ही है वो अगर भक्त बनता है तो माता पिता रोते हैं, अरे 5-7-8 होते तो चलो 2 साधु कर देते तो काम तो चल जाता। ये आजकल की कहाँ, कल परसों कहाँ कहा था, अरे कृष्णा, तो ये 2 वाला फार्मूला ठीक नहीं है, 3-4 में 1-2 साधु बना दो, हमें बहुत जरूरत है कृष्ण भावना अमृत के प्रचार करने की, तो आपसे नहीं संभाले जाते हैं, अब 5 साल में ही हमको दे दिया करो, लेकिन एक पर हम साधु बना दे, अकेला बेटा लाल कपड़े पहने तो माता पिता की आंखें लाल हो गई, बड़ी परेशानी हो गई, एक बेटा था हमारा साधु बना, तो 2-4 कर लेते तो एक हो गया, क्या फर्क पड़ता। ये सरदार जी, जितने सरदार है ना, ये महाराज गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्यों के दूसरे बेटे को कहा कि मेरे को दे दो, तो हर घर में शिष्य जो गुरुजन के शिष्य थे उसका दूसरा बेटा उसको महाराज ने अपनी सेना में ले लिया, बोला अब तुम खालिस हो, प्योर हो, अब तुम खालिस का मतलब बिल्कुल प्योर हो, तो उनकी सेना बनाई खालसा। तो 2 थे तब एक गुरु को दिया ना, अब एक होता तो गुरु को कहां से देंगे, तब तो कहते माता तुम्हें वो माता जब पिता, गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, अब गुरु को नहीं देंगे। तो 2 हो तो 3-4-5 होने में कोई आपत्ति नहीं है, 2 भी साधु बन जाए तो कोई चिंता नहीं। तो ये फार्मूला गलत है कि 1-2, हम कहां कल परसों और कहीं क्लास देते हुए ये बात कही थी, भगवान शंकर का जब ब्रह्मा जी के मस्तक से उत्पत्ति हुई तो कहा कि तुम सृष्टि करो, तो उसने भूत पैदा किए और भूत ऐसे किए जो ब्रह्मा जी को परेशान करने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा बाबा शंकर ये तुम्हारी सृष्टि बंद करो, इसकी जरूरत नहीं है, और हमारे मुख से पता नहीं कैसे निकला, मैंने बोला ये फैमिली प्लानिंग का मतलब है बदमाश मत पैदा करो, तुम ज्यादा मत पैदा मत करो, मतलब ज्यादा ऐसे भूत मत पैदा करो जो दूसरों को दुख दे, थोड़ा ही काफी है तुम्हारा। तो इसका अर्थ असल में ये लिखता है कि अच्छे हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, और भक्ति सिद्धांत सर क्या, हमें 100 बेटे हो हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर भगवान के भक्त बनते हैं, लेकिन एक बदमाश पैदा करने से तो बहुत मुसीबत हो जाए। तो भक्तों को निश्चिंत होके 4-5 बच्चे जो गृहस्थी हो 2-3 हमको दे देना, हमें स्कूल खोलना है, हमें उसको वर्ण आश्रम में शिक्षा देनी है, हमें आपको एक परेशानी पता है क्या है, पढ़ाने का खर्चा इतना बड़ा है, एक लड़का और हो गया तो कितने लाख रुपए खर्च होंगे, कि पता नहीं कमा के देगा कि नहीं देगा, आजकल पढ़ाई के खर्चे और बीमारी के खर्चे से लोग इतने डरते हैं आधे लोग तो इससे मरते, पढ़ाई का खर्चा और बीमारी का खर्चा इतने ज्यादा हो गए हमारे देश में, फिर भी कहीं कम है तो है, गवर्नमेंट स्कूल है मुफ्त की, लेकिन बाहर के देशों में आधी कमाई इन दो चीजों के ऊपर जाती है। इसलिए मत डरो, आप में से किसी की इच्छा हो दो चार हमको दे देना, हम ले लेंगे निश्चित रूप से। हमें तो चाहिए, क्योंकि बच्चे होंगे तभी सुधार पाएंगे। बड़ों के साथ हम, बच्चों के साथ रहेंगे तो हम भी जवान रहेंगे, बड़ों के साथ तो हम बूढ़े होते जा रहे हैं। तो हमेशा नया रहने के लिए बच्चों के साथ रहना। कहते हैं टीचर का स्पिरिट कभी भी ओल्ड नहीं होता है, इज एन स्पिरिट इज ऑलवेज यंग बिकॉज ही लिव्स विद द स्टूडेंट्स। बच्चों के साथ रहने वाला स्पिरिट में हमेशा यंग रहेगा, कभी अपने आप को बूढ़ा नहीं मानेगा। प्रभुपाद जी यहाँ से गए थे तो पासपोर्ट में क्या लिखा था? टीचर। प्रोफेशन में टीचर प्रभुपाद ने लिखा था, और देखा प्रोफेशन में प्रभुपाद के पासपोर्ट में टीचर लिखा हुआ है। और फिर प्रभुपाद को अभी आप बूढ़े हो गए, बोला मैं बूढ़ा नहीं हुआ, आई एम यंग, क्योंकि स्टूडेंट। और अपने शिष्यों को शिष्य नहीं कहते, माई स्टूडेंट्स, प्रभुपाद यूज करते थे माई स्टूडेंट्स, अपने को टीचर कहते थे, ये मेरे स्टूडेंट है। और स्टूडेंट प्रभुपाद के, प्रभुपाद 70 साल के थे और स्टूडेंट 17 साल के थे, एंड प्रभुपाद वाज ऑलवेज यंग विद देम। बड़ी एनर्जी मिलती है ना आपके सामने, जैसा देखो सामने जो आपके बैठा है वो आपके लिए आईना है, आईने में आपको जो उस आईने में आप जैसे जो आईने में दिखेंगे वैसे ना, आईने में सामने आईना है तो जवान दिख रहा है, तो आप अपने आप जवान हो जाओ। सो लिव विद यंग पीपल, बहुत जरूरी है। और यंग नए होते हैं, यंग अभी आए हैं दुनिया में तो नए होते हैं, तो नवीनता सबको अच्छी लगती। तो यहाँ हर एक, क्योंकि पुष्प बहुत ताजा थे, और ताजा इसलिए थे वैकुंठ में हर चीज ताजा होती है, कोई चीज पुरानी होती ही नहीं है। वैकुंठ के निवासियों के शरीर नीलाभ रंग के होते हैं, और नारायण के ही समान उनके चार हाथ होते हैं। ये वैकुंठ वासियों के रंग का वर्णन किया है कि उन सब का शरीर नीले रंग का होता है, और सब चतुर्भुज रूप में चार हाथों वाले रूप में होते हैं। हरे कृष्णा। कोई पूछे कि नीले शरीर क्यों होते हैं, इसका क्या उत्तर क्या हो सकता है? अमेरिका में पैदा होते हैं वो सब गोरे होते हैं, क्यों होते हैं पता नहीं क्यों होते हैं। अफ्रीका में पैदा होते हैं काले होते हैं, क्यों होते हैं पता नहीं क्यों होते हैं। वैकुंठ में जो होते हैं सारे नीले होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं। भगवान की इच्छा से होते हैं, तो कुछ जगहों के अंदर कुछ लोग पैदा होते हैं उनका विशेष वहां का कलर होता है। क्या नीले कलर की कोई विशेषता है क्या? होनी चाहिए, प्रेम कोई प्रेम का कलर है ये, कि एक दूसरे से ऐसे नहीं है कल आप सब लोग नील लगा के यहाँ घूमो के हम अभी किसी से द्वेष नहीं करते हैं। कम से कम सफेद कपड़ों को लोग जो नीली लगा नीलिमा लगाते हैं ना जैसे, तो ऐसे नीला हनुमान जी को भूख लगी और माता सीता को कहा मुझे माँ भूख लगी है जरा कुछ खाने को लिए चाहिए। उसने कहा अभी थोड़ा सा मैं श्रृंगार कर रही हूँ, राम जी से मिलना है फिर मैं आपको देती हूँ। तो बोला क्या कर रही है माँ श्रृंगार में? बोला ये सिंदूर लगा। मैं क्यों लगा रही है लाल? बोला राम जी को बड़ा अच्छा लगता है। हनुमान चले गए, बोला जी बेटा आ जाओ कुछ खाओ है नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद आया बाजार से कहीं से सिंदूर लेके पूरे का पूरा लाल होके आया। मैंने बोला बेटा तुम खाने के लिए कुछ मांग रहे? बोला खाना भूल गया मैं, इतना छोटा सा लाल लकीर लगाते हो राम जी को अच्छा लगता है, देखो मैं पूरे का पूरा लाल होके आ गया। तब से हनुमान जी को अभी लोग सिंदूर डालते रहते हैं, अभी तक लोग सिंदूर डालने की परंपरा चल रही। तो ऐसे नहीं कल आप लोग सब नीला लगा के घूमो क्योंकि ये प्रेम का कलर है तो हम प्रेम करेंगे नीले हो गए। प्राकृतिक वहां के सब वैकुंठवासी उनका रंग नीला होता है। रहस्य तो हर रंग का है, हर रंग का अपना रहस्य है। गोरा रंग त्याग और वैराग, ये जो सेफ्रान है त्याग का रंग है, वैराग का रंग है, आग की तरह अपने आप को तपाने का रंग है। जो आग में तपता है सोने की तरह वही सोना कहलाता है, तो ये वैराग का रंग है। ऐसे हर एक रंग का अपना अपना अर्थ होता है। तो ये वैकुंठवासी नीले रंग के, उसका भी कोई अर्थ होगा। लाइट क्यों गई है? 9 बज गए हैं क्या? हाँ तो किसी ने लाइट ही बंद कर दी।
हरे कृष्णा। तो वैकुंठ ये स्वरूपिया, इसको बोलते हैं स्वरूपिया, ये रूप वैसा ही है, सबका रूप कैसा है, भगवान जैसा रूप है। अंतर क्या है दोनों में, दो चीजें भगवान में होती हैं जो सब में नहीं होती, और भी विशेषताएं हो सकती है लेकिन दो विशेषताएं, एक कौत्सुभ मणि, उसमें कोई छिद्र नहीं होता, उसमें सोराख नहीं है, छिद्र वाली चीज भगवान को पसंद नहीं आती, कौत्सुभ मणि। और दूसरा श्री वत्स चिन्ह, श्री श्री का कहते हैं लक्ष्मी, और श्री वत्स चिन्ह एक भूरे रंग के सुनहरी रंग के बालों का एक बहुत सुंदर झुकटा भगवान के वक्ष स्थल के ऊपर होता है, वो सिर्फ भगवान के होता है और किसी के नहीं होता है। और भी कुछ विशेषता है क्या, माला तो है इसको, वैजयंती माला नहीं कहा है, माला पहनी हुई है इनको, पता नहीं वैजयंती माला भगवान की विशेष पांच सुगंधित पुष्पों की बनती है, वो माला भी विशेष है भगवान की, सबके लिए वैसी माला ऐसे नहीं लगता है, ऐसे इस मंच को सिर्फ माला लिखा है, वैजयंती शब्द नहीं लिखा है इसमें, ऐसे दिख रहा है। और कोई विशेषता, वैकुंठ के वासियों के चार हाथ होते हैं, काय के लिए, ज्यादा काम करने के लिए, आदमी कहते हैं ना अरे भैया दो ही हाथ हैं, दो आदमी मेरे साथ हो जाओ, चार हाथों से काम करते हैं, तो वहां भगवान ने पहले ही चार हाथ दिए थे अच्छी तरह से सेवा कर, ज्यादा सेवा करने के लिए। भाई आदमी कहते पांच सात आदमी साथ मिलकर काम करने का मतलब, अभी हम दो नहीं है, चार हाथ से काम कर रहे हैं, दो आदमी है चार हाथ हो गए, भगवान ने एक एक को चार हाथ दे दिए, बहुत अच्छी तरह से सेवा करो, सेवा सेवा की सेवा हाथ का काम क्या है, सेवा करना है, तो सेवा करोगे तो आपके भी चार हाथ हो जाएगा, मतलब ये उत्साह बढ़ेगा तो चार हाथों से सेवा करने लग जाओ। तो वैकुंठ के वासियों का ये वर्णन है। अब वैकुंठ के वासी क्रोधित क्यों हो गए, संतों को क्रोध क्यों आया, ये सब चर्चाएं आगे चलेंगी, अब आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, प्रसाद खाइए, हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी का कोई टीका टिप्पणी सुझाव कुछ हो तो बोलिए, लेकिन यहाँ एक घंटा पूरा नहीं हुआ है, 57 मिनट्स 19 सेकंड हुए, इंतजार की घड़ी तेज चलती है, जब इंतजार होता है ना घड़ी तेज चलती, क्या टाइम हुआ, 9:00, अरे कृष्णा, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णव।